بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. سب سے پہلے تو معذرت کہ میں کوئی 15 منٹ آج لیٹ ہو گیا، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات بھی ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں، تو بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرے، تو اسی پروسیس میں لیٹ ہو گیا میں. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. شاید میں نے پہلے ایک اپنا عہد قدیم کا قصہ سنایا تھا، اس لیے کہ وہ نوجوانی کا دور تھا، اور نوجوانی ایسا ہی لگتا ہے 2-4 صدی پہلے کی بات ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا میں. میرے وہاں ایک کولیگ تھے رانا سعید، تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کو اولیاء کرام سے ملنے کا شوق ہے، میرے مرشد ہیں وہ ولی کامل ہیں، تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے. تو میری ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مرشد موہنی روڈ کی ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں. ویسے وہ صاحب کہیں جاب کر رہے تھے، لیکن مغرب کی نماز موہنی روڈ کی مسجد میں پڑھاتے تھے آ کے. تو میں رانا سعید صاحب کے ساتھ اس مسجد میں چلا گیا. تو وہ صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو رانا سعید صاحب نے ہم جب جوتے اتار رہے تھے تو کہا کہ وہ سامنے میرے مرشد بیٹھے ہیں. ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، مغرب کی نماز ہوئی. تو میرے دل میں یہ تھا کہ جیسے لوگوں سے سنا تھا، ہم سبھی سنتے رہتے ہیں کہ ولی اللہ کے پیچھے پڑھی گئی نماز عام نماز سے بڑی مختلف ہوتی ہے، تو میں بھی یہی توقع رکھ رہا تھا کہ یہ ولی اللہ ہیں، ان کے پیچھے اگر میں نماز پڑھوں گا تو شاید خانہ کعبہ میں نماز ادا کروں گا میں، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کروں گا. تو ایسی ہی امیدیں لے کے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھ لی. نماز جو کہیں اور مسجد میں پڑھتا تھا یا تنہائی میں پڑھتا تھا، اس میں اور اس نماز میں کوئی فرق نہیں تھا. تو میرے دل میں یہ آیا کہ کیسے ولی اللہ ہیں، نماز تو ان کی ویسی ہی ہے جیسی ہم روز پڑھتے ہیں. تو جب ہم نے سنتیں ادا کر لیں تو لوگ ان سے ملنے کے لیے نصف دائرے میں بیٹھے، تو رانا سعید صاحب نے مجھے کہا کہ آئیے ان سے آپ ہاتھ ملائیں. تو میں بیٹھ گیا اپنی باری کے انتظار میں کہ ہاتھ ملاتا ہوں ان سے. تو ان صاحب نے پہلی جو بات کی وہ یہی کی کہ دیکھیے، ہم لوگ گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ ہم ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ ہی نہیں ہے. میں ہاتھ ملایا اور چلا گیا. میری بدقسمتی کہ میں دوبارہ ان صاحب سے کبھی مل نہیں پایا. یہ شاید بات کر رہا ہوں میں 1973-1974 کی. بڑے عرصے کے بعد پھر ایک چیز پتا چلی کہ اگر نماز میں مجھے فرق محسوس نہیں ہوا تو یہ قصور ان کا نہیں تھا، یہ میرا قصور تھا. اس لیے कि बुजुर्गों का कहना यह है कि वली अल्लाह एक आईने की मानिंद होता है, आईने में अगर एक खूबसूरत इंसान अपना अक्स देखता है तो उसको वो अक्स खूबसूरत ही दिखाई देगा, और अगर मेरी जैसी शक्ल सूरत का इंसान देखेगा तो वैसे चीखे मार के भाग जाएगा आईने में अपनी शक्ल देख के। तो कसूर आईने का नहीं है, कसूर उसका है जो अपनी शक्ल देख रहा है आईने में। ये बड़ी देर के बाद इल्म में आई बात, वली अल्लाह एक आईना है, उसके अंदर इंसान को वही कुछ दिखाई देता है जो वो खुद होता है। वली अल्लाह के पास जाने वाले चार किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म वो है कि बड़े खुश एतकाद लोग, बहुत ही खुश एतकाद लोग, वो खुश एतकादी के साथ अच्छे ख्यालात और अच्छी उम्मीदों के साथ वली अल्लाह के पास जाते हैं, तो उन्हें वली अल्लाह में करामात दिखाई देती हैं, वली अल्लाह में उसके इल्म की मेराज दिखाई देती है, और वो वाह वाह करते हुए उठते हैं वहां से। दूसरी किस्म वो है जिनका जाहिर और बातन एक होता है, तो अगर वो खुश एतकाद हैं तो जाहिर में भी खुश एतकाद हैं, अगर खुश एतकादी नहीं है तो बातन में भी खुश एतकादी और जाहिर में भी खुश एतकादी नहीं है। एक तीसरी किस्म होती है जो जाहिर तो करते हैं कि हम बड़ी अकीदत के साथ आए हैं, लेकिन दर हकीकत वो या तो वली अल्लाह का इम्तहान लेने जा रहे होते हैं या अंदर से औलिया किराम से बदजन होते हैं। और चौथी किस्म वो है जो बजाहिर बदजनी का इजहार करते हैं लेकिन दर हकीकत अकीदत रखते हैं। ये चार किस्में हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो फायदे में रहते हैं वो लोग हैं जो खुश एतकाद हैं, इन्हें बहुत कुछ मिलता है। वो जो तीसरी किस्म है कि जाहिर तो करते हैं कि वो अकीदत से मिल रहे हैं लेकिन दर हकीकत दिल में उनके बुगज होता है, वो सबसे ज्यादा घाटे में रह जाते हैं। सारे हम भटकते ही रहते हैं, इल्म हासिल नहीं होता। इसी तरह वली अल्लाह जितने भी गुजरे हैं इन सब का एक वतीरा रहा है कि जो जिस नियत से आता है उसको वही कुछ दे देते हैं। तो अगर कोई सिर्फ कशफ व करामात देखने के लिए गया है तो उसका इजहार हो जाता है, अगर कोई दुनियावी जरूरत के तहत उनके पास गया तो उसकी दुनियावी जरूरत वो अपने वसाइल के जरिए से उसकी खिदमत कर देंगे वली अल्लाह। अगर दुआओं के लिए दुनियावी काम की दुआओं के लिए गया है तो दुनियावी काम की दुआ कर देंगे। घाटे में वो लोग रहते हैं जो दुनियावी दुआओं के लिए वली अल्लाह के पास जाते हैं, इसलिए कि दुनिया की हकीकत तो रब के नजदीक मरी हुई बकरी के एक बाल के बराबर भी नहीं है, बड़ी हकीर चीज के लिए वो जाते हैं। ये मालूम नहीं किससे में ऐसी जहन में ये पॉइंट आ गया, तो देख तो मैं ये सवाल रहा था। पुराने सवालात नीचे हैं। किसी साहब ने ये तहरीर दी थी इस ताकीद के साथ कि मैं इसे बुलंद आवाज में ना पढ़ूं। देखिए, जो इनफरादी दुआएं हैं, इसके लिए मैं हमेशा एक अर्ज करता हूं कि इस सेशन को इनफरादी दुआओं के लिए इस्तेमाल न कीजिए बराए करम, इसलिए कि दूसरे सबका हक मारा जाता है और अच्छे लोग किसी का हक मारने से हमेशा गुरेज करते हैं कि इसकी जवाबदेही दुनिया में भी मुश्किल हो जाती है और आखिरत में भी बहुत मुश्किल होगी। तो इनफरादी दुआओं के लिए अगर आप मेहरबानी फरमाएं, दुआ के सेशन के दौरान ही तशरीफ ले आए तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका। मजीद फाड़ के फेंक दीजिएगा, उन्होंने राजदारी की रिक्वेस्ट की थी। किसी का सवाल है कि रूहानियत या वलायत की 10 दर्जे की तगदोह तो दूर की बात, आपसे जो भी फैज मिलता है उसका ये फायदा जरूर हुआ है कि अपनी जात के ऐब वाजे इतने हो गए हैं कि पहले तो ऊपर दिए गए स्केल के मुताबिक एक अच्छा इंसान बनने के लिए शायद 00 से 0 तक का सफर ही इस जिंदगी में तय ना हो सके, लेकिन जितना भी तय हो जाए मेरे नजदीक तो वही खुश नसीबी की बात होगी। भाई, मुझसे तो फैज लोगों को उस वक्त मिले जब मैं कोई फैज याफ्ता इंसान हूं। सूरज से रोशनी सबको मिलती है इसलिए कि वो रोशन है, लेकिन मरीख से रोशनी किसी को नहीं मिलती कि वहां अंधेरा है। तो मुझसे क्या किसी को रोशनी मिलेगी? बहरहाल आपकी अपनी एफर्ट है, लेकिन एक बात जरूर मैं अर्ज कर दूंगा कि अगर आप इस मकाम तक आ गए हैं कि आप पर अपनी जात के ऐब वाजे हो गए, तो समझ लीजिए कि अब आप हदायत याफ्ता लोगों में चले जाएंगे। इसलिए कि सबसे जरूरी चीज ये है कि इंसान को अपनी खामियां और अपने ऐब न सिर्फ ये कि एहसास हो जाए बल्कि तो दिखाई देना, तो उससे अगली स्टेज है। इंसान उसी वक्त हिदायत पाता है जब उसे ये एहसास हो कि उसमें खामियां हैं, उसमें कमजोरियां हैं, उससे गलतियां होती हैं। तो ये एहसास बेदार होना सबसे जरूरी चीज है, उसके बाद का सफर आसान है। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह आप पे मेहरबानी फरमा दे और अल्लाह आपको उस मकाम की तरफ ले जाए जो जिसकी चाहत आपके दिल में है। इन्हीं साहब ने दूसरा लिखा है कि अक्सर ख्वाब में मुख्तल मजारात पर अपनी मौजूदगी महसूस करता हूं, साहिब मजार का नाम भी याद रह जाता है। कुछ दिन पहले आपका एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें आपने इस झाड़ू का जिक्र किया था जो इस दीवार पर कमरे में लगी है, जिसका रेफरेंस दिया था आपने कि इसका नाम सर सुल्तान ही बताया था। कमाल इत्तफाक के इसके बाद एक ख्वाब में हजरत सखी सरवर के मजार पर अपनी मौजूदगी महसूस की। जब गूगल्स पर सर्च की तो पता चला कि ये मजार डीजी खान में है और इन बुजुर्ग का नाम भी सुल्तान के नाम से मशहूर है। अब क्या मुझे वहां फातिहा के लिए जाना चाहिए? दिल तो बहुत कर रहा है और इन बुजुर्ग के बारे में भी कुछ अर्ज कर दे। सखी सरवर साहब बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। इनका मजार डीजी खान से अगर आप क्वेटा के लिए जाएं फोर्ट सेंडमन की सड़क पर तो तकरीबन कोई 8 मील के बाद आपको राइट साइड पर सखी सरवर साहब का मजार दिखाई देगा। बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, जरूर जाइए, अल्लाह आपको तौफीक दे। ये जो आपको मुख्तलिफ मजारात पर अपनी मौजूदगी महसूस होती है यह असल में आपकी रूह की सैर होती है जो आपको दिखाई दे रही होती है। यह आपकी रूहानियत की तरफ सफर को जाहिर कर रही है बात। अगर मुमकिन हो सके जरूर जाइए सखी सरवर साहब के यहाँ। तीसरा इन्हीं साहब का सवाल है कि आप अपनी बुक या लेक्चर में किसी सवाल के जवाब में किसी सूरत को पढ़ने का फरमाते हैं, जैसे सूरह सबा ईशा के बाद, तो क्या वो जनरल पब्लिक भी पढ़ सकती है या वो उन साहब और साहबा ही के लिए इजाजत है जो सवाल पूछते हैं? सूरह सबा जो भी पढ़ना चाहे जरूर पढ़ ले, मुबारक चीज है, इसकी बरकत हासिल होंगी। अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कामिल ऐसी नेमत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती। अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कामिल से महरूम इंसान डर, खौफ और खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं। ऐसा क्या अमल किया जाए कि हर हालत में तवक्कल सिर्फ अल्लाह ही की जात पर हो और यकीन कामिल हासिल हो जाए? इसका ईमान, तवक्कल अल्लाह और यकीन कामिल एक ही चीज है, ये मुख्तलिफ है। खुद एतमादी पैदा करने के लिए सूरह बकरा के पहले 3 रकू बहुत ही सरीउल असर हैं। जो शख्स सूरह बकरा के पहले 3 रकू नमाज फजर और नमाज ईशा के बाद बाकायदगी से पढ़ता है, उसमें 3-4 चीजें पैदा हो जाती हैं। एक तो अल्लाह के साथ मोहब्बत, बल्कि उससे भी पहले कि इंसान को अपनी खताओं का एहसास होने लगता है, फिर अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, रब पर प्यार आने लगता है और ये इब्तदा है इश्क की तरफ सफर की। और तवक्कल पैदा होने लगती है, बल्कि यूं कह लीजिए ज्यादा सही कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलने लगती है। और तीसरी चीज खुद एतमादी पैदा होती है। तो वो शख्स जिसमें खुद एतमादी की कमी है, अगर वो नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद सूरह बकरा के पहले 3 रकू की तलावत पाबंदी और बाकायदगी के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला उनमें ये 4 चीजें पैदा हो जाएंगी। तो आप सूरह बकरा के पहले 3 रकू नमाज फजर और नमाज ईशा के बाद तलावत कीजिए पाबंदी के साथ, बाकायदगी के साथ। इबादत के सिलसिले में याद रखिए कि इबादत की कसरत से ज्यादा जो चीज इंसान को फायदा देती है वो बाकायदगी और पाबंदी है। खा थोड़ी इबादत की जाए, मैं फर्ज इबादत के अलावा की बात कर रहा हूं, फर्ज तो हमें सबको अदा करने हैं अपने, فرض عبادات تو سبھی پر فرض ہیں, وہ پوری کرنی ہے. میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ خواہ تھوڑی نفلی عبادت کی جائے لیکن پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے, اس میں ناغے نہ آنے دیں, تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو آپ پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع تلاوت کیجئے روز, انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں آپ پر ہو جائیں گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا ایمان, توکل اللہ, اللہ اور یقین کامل ایک ہی چیز ہیں یا مختلف ہیں؟ ڈیفینیشن کے لحاظ سے تینوں مختلف ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے میں سے پیدا ہوتی ہیں. جب انسان میں یقین کامل آ جاتا ہے تو پھر ایمان پختہ ہوتا ہے, اور جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر توکل آتی ہے. یہ بھی ایک اصل میں ذاتی دعا ہی کا فرمایا ہوا ہے انسان نے بھی, تو پلیز اس کو آپ دعا کے سیشن تک رہنے دیجیے. یہ میں کاغذ اس لیے پھاڑ دیتا ہوں کہ ذاتی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے. رازداری, فقیر کے یہاں رازداری پہلی چیز ہے, وہ کسی کی ذاتی بات کو بدترین صورتحال میں بھی آیا نہیں کرتا. میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت جو جس کی تکرار ہوئی ہے پوری سورہ میں, اس کے بارے میں کہا تھا فبلال ربکما تکذبان, کہ اس کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان پر. تو اس کے بارے میں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ, برائے مہربانی اس کی تعداد کی وضاحت کر دیں. اس کی ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ آپ اس کو دن کی روشنی سے پہلے اور دن کی روشنی غائب ہونے کے بعد پڑھیے. تو بہترین وقت اس کا تہجد اور فجر کے درمیان ہے, وہ اس کی بنیادی شرط ہے کہ دن کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے پڑھا جائے اسے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اسے تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے, اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے. تو 101 مرتبہ کم سے کم اس کو پڑھیے, اور 21 ٹائمز درود شریف پہلے اور 21 ٹائمز بعد میں پڑھیے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں پابندی اور باقاعدگی شرط ہے, اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے فوائد ملے تو کبھی پلٹ کر یہ نہ دیکھیے کہ مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا یا کب کیا ملے گا, بس پڑھتے رہیے. ہمارا کام ہے محنت کرنا, اس کا پھل دینا رب کا کام ہے. تو رب اپنے وعدے کا سچا ہے, وہ ضرور محنت करके फल देता है। सब ये जाति चीजों के लिए प्लीज, ये आज ज्यादातर वही हैं, बराए करम आप दुआ के सेशन में आ जाइए, मैं जरूर आपकी खिदमत कर दूंगा जो कुछ मेरे लिए मुमकिन है, लेकिन इस सेशन में इसे इस्तेमाल न कीजिए। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि खामोशी और जुबान की हिफाजत के बारे में रोशनी डाल दे। और ये इकराम का शेवा है, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। इसके पीछे हिकमत ये है कि जब इंसान कम बोलता है तो वह अपने ख्यालात में गर्क रहता है, और जो ख्यालात में गर्क रहता है तो उसमें गौर और फिक्र की आदत डेवलप होती है कि खामोश बैठा है कुछ ना कुछ तो दिमाग सोचेगा। तो एक तो गौर और फिक्र की आदत डेवलप होती है, और दूसरे कंसंट्रेशन बढ़ती है इंसान की। तो इसलिए फकीर लोग ज्यादातर खामोश रहते हैं, बात कम करते हैं। तो जब भी इंसान खामोश बैठा हुआ हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर पर गौर करना शुरू कर दे, तो उससे इंशाअल्लाह ताला कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और नए नुक्ते भी जहन में आने लगेंगे। दूसरा सवाल इनका ये है कि बाज़ औक़ात फकीर की महफिल में इंसान बैठे हुए अपने आप को वेटलेस या लाइट फील करता है, वो असल में उस फकीर का जो जिक्र इलाही है उसकी वजह से उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो चूंकि जिक्र इलाही है और रब के जिक्र में सुकून बहुत है। तो रब ने खुद भी कहा कि मेरे जिक्र में जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, तो वो वाइब्रेशंस असरअंदाज होने लगती हैं इंसान पर, उसकी वजह से उसे सुकून महसूस होता है और इंसान ये महसूस करता है कि जैसे वो लाइट हो गया है। इन्हीं साहब ने सवाल पूछा है कि क्या चीज, क्या अमल, क्या खूबी जो रब ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद हो और जो रब ताला की बहुत ज्यादा खुशी और मुस्कुराहट का बायस, जिससे रब ताला बहुत खुश होता हो, फरमा दे। तो हम सब ने पढ़ा है कि अल्लाह के नजदीक तीन काम बहुत ज्यादा उसकी रजा का बायस बनते हैं, मुसाफिर को खाना खिलाना। तो अब तो चूंकि वो सफर उस टाइप के रह नहीं गए, तो यूं कह लीजिए कि भूखे को खाना खिलाना, किसी मकरूज का कर्ज अदा कर देना और गुलाम को आजाद कराना। तो आजकल चूंकि गुलाम तो है नहीं, गुलामी का सिस्टम खत्म हो गया, तो इसकी बजाय अगर वो कैदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम अदा नहीं कर पाते और कैद में पड़े हुए हैं, अगर उनके जुर्माने अदा कर दिए जाएं तो उनको रहाई हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी इसमें बहुत है। साहब ने ये सूरह अखलास की फजीलत और अहमियत के बारे में पूछा है कि सूरह अखलास की फजीलत और अहमियत बता दे, नीज इसका दौरे कबीर और दौरे सगीर भी बता दे, अगर कोई बतौर वजीफा पढ़ना चाहे तो गाइड कर दे। इसके बारे में पूरा एक लेक्चर मौजूद है, आप अगर किसी वक्त साबर साहब या टीपू साहब से कहेंगे तो वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि वो लेक्चर निकाल के उसको अलहदा से रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर दें। इससे रेपिटेशन से हम बच जाएंगे जिसके बारे में लोग शिकवा करते हैं मुझसे काफी। दूसरा सवाल इंसान ने पूछा है कि जिस कमरे में आप लेक्चर देते हैं इस कमरे में एक दुरूद शरीफ लगा हुआ है, क्या ये भी आपको अता हुआ है बड़े शाह साहब से, और अगर कोई भाई इसको पढ़ना चाहे तो मेहरबानी फरमा के तादाद और वक्त बता दें। ये दुरूद शरीफ जरूर पढ़िए, अल्लाह जिसको भी तौफीक बख्शे हिम्मत दे, दुरूद शरीफ इसे पढ़िए, इसकी फजीलत है बहुत, और इसके पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल होती है इंसान को। गिन के मत पढ़िए, खुला पढ़िए, इसलिए कि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद सलाम भेज रहे हैं उनकी रहमतें तो अनगिनत हैं, उनके एहसानात हम पर अनगिनत हैं, तो ये मेरे नजदीक कदरे अफसोस की बात होगी कि हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसमें भी गिनकर पढ़ते हैं। तो खुला पढ़िए, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है तौफीक दी है पढ़िए, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा इसके सदके। एक सवाल किसी ने पूछा कि इंसान रब ताला को याद करता है, पुकारता है, नेक अमल और नेकी भी करता है, लेकिन दिल के बैकग्राउंड में फिर भी एक उदासी सी रहती है, ये चीज खत्म नहीं होती। दो चीजें, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। अगर तो मेरे जैसा इंसान है कि दिल में आलाइशें भरी हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, लालच है, हिर्स है, हिर्स कलाम है, हिर्स तुआम है, खुदगर्जी है, तो दिल को इत्मीनान नहीं होता। इसलिए कि जिस दिल में आलाइशें भरी हैं वहां रब रहता नहीं, रब तो उन दिलों में रहता है जो बिल्कुल पाक साफ है। तो हम अगर अपने दिलों को इन आलाइशों से पाक कर लें तो उसमें रब बसने लगता है, तो इत्मीनान हो जाएगा। एक दूसरी सूरत और होती है लेकिन वो बड़े नेक लोगों का दर्जा है, वो ये है कि इंसान को अगर ये ऑब्सेशन हो जाए कि रब मुझे मिले, मुझे रब मिल जाए, तो फिर वो उसे बेचैन रखेगा और उसको महमीज करता रहेगा उस राह पर चलने को, उस राह पर दौड़ने को जो राह उसे रब तक ले जाएगी। तो वो बेचैनी असल में वो ख्वाहिश की शिद्दत की वजह से पैदा होती है कि मुझे रब मिल जाए। ये दूसरा सवाल भी ऐसा है जिसको यहां कई बार हमने डिस्कस किया, आप राबता कर लीजिए साबिर साहब से या टीपू साहब से, तो वो निकाल देंगे आपको कि कौन सी नशिस्त में इसका जिक्र हुआ था। तो इन्होंने सवाल ये पूछा कि जब हम किसी बुजुर्ग के मजार पर जाती हैं और फातिहा खानी करते हैं तो क्या हमारा सवाब बतौर हदिया पहुंच जाता है? बड़े शाह साहब के मजार शरीफ पर जाने की इजाजत अता कर दे और मजार शरीफ जाने के आदाब और बड़े शाह साहब से मुलाकात के बारे में मेहरबानी करके गाइड कर दे। आप जरूर जाइए जनाब किबला मुर्शिद साहब के मजार पे, जरूर हाजिरी दीजिए। कोई खास आदाब नहीं है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप बादब रहें और खामोशी अख्तियार कीजिए, बजाय इसके कि वहां भी खड़े होकर हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहें। खामोशी और बादब, बस ये दो चीजें हैं जिसका ख्याल रखें। ये तीनों सवाल ऐसे हैं जिन पर यहाँ गुफ्तगू होती रही है बराह करम, पहले से हुई हुई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग हासिल कर लें, वो फ्री है उसमें कोई। यहाँ एक चीज तो जरूर है कि आपको जो कुछ भी यहाँ चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, किसी चीज की कोई चार्जेस नहीं। हत्ता कि मुझे भी कोई ले जाना चाहे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ, लेकिन खाना महंगा पड़ जाएगा आपको मेरा। ये सवाल इनके कि बच्चे बच्चियों के रिश्ते के बहुत मसाइल हैं आजकल, रिश्ते के मामले में बेसिक मायार दौलत माल जायदाद को रखा जाता है, क्या माल और दौलत ही सब कुछ है? इस पर खासी तफसीली यहाँ गुफ्तगू होती रही है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि मॉरल वैल्यूज के बारे में कुछ बता दें, विद एक्सेप्शन कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज इख्तियार करें हम सब भाई, ये इस पर मौजूद है गुफ्तगु। मायूसी से इंसान किस तरह निकल सकता है, इसका भी आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए इनसे या किताब में मेरा ख्याल छप गया हो ये वो हिस्सा, तो वहां से देख लीजिए। हमारे बहुत से नौजवान खसूसन स्टूडेंट्स यूके जाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, वहां जाकर वो हर जायज और नाजायज अमल इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से किसी तरह बरतानिया में सेटल हो सकें। शादी भी इसलिए करते हैं कि सेट हुआ जा सके, बाद में डाइवोर्स हो जाती है। वहां पर डाइवोर्स रेशियो बहुत ज्यादा है, क्या ये दुरुस्त है? इस पर भी यहाँ दो तीन बार बात हुई, ले लीजिएगा इनसे लेक्चर साहब। ये किसी साहब ने पूछा है कि शाह साहब लफ्ज यूसुफ पर रोशनी डाल दें, क्या ये नाम वालदेन अपने बच्चों के रख सकते हैं, और देखने में आया है कि नाम यूसुफ काफी भारी नाम है। इस नाम के शख्स पर आजमाइश और मुश्किलात में रहते हैं। नीज कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ और उस वाक़े को आज के दौर के मुआशरे में किस तरह रिलेट किया जा रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम है, मुबारक नाम है, इसको जरूर रखिए। ये भारी और हल्के का तो मुझे नहीं मालूम, मैं इतना जरूर जानता हूं कि नाम के असरात इंसान की शख्सियत पर आते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत हैंडसम इंसान थे, तो और जहां तक भारी की बात है तो शुरू की जिंदगी की मुश्किलात के बाद उनको बादशाहत मिल गई थी। तो अगर हम उन मुश्किलात को रिलेट करते हैं उस नाम से, तो ये भी तो देखिए कि बाद में बादशाहत मिली थी, तो उम्मीद रखिए कि आप भी किसी मुल्क के बादशाह हो जाएंगे। जो सूरह यूसुफ में किस्सा बयान हुआ है, आप उसको इस जमाने से इस तरह रिलेट कीजिए कि असल में उसकी रूह क्या है, उस रूह पे नजर रखिए, किस्से पर नजर ना रखिए। उसकी रूह ये है कि जो इंसान नेकी की तरफ जाता है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है, जिससे उसने मना किया है उससे रुकता है, तो शुरू में तो दिक्कतें और मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन बिल आखिर अंजाम बड़ा अच्छा होता है। तो हम जब अल्लाह जिन चीजों से रोकता है उनसे रुकते हैं, नेकी की तरफ जाते हैं, तो दिक्कतें तो जरूर आएंगी लेकिन अंजाम बहुत अच्छा होता है। तो इंसान को अंजाम पर नजर रखनी चाहिए। ये दूसरा सवाल भी इससे पहले डिस्कस हो चुका कि क्या कोई शख्स घर बैठकर किसी बुजुर्ग की रूह को सवाब हदिया की नियत से तस्बीह या कुछ पढ़ सकता है, क्या बुजुर्ग साहब की रूह रिस्पॉन्स भी करती है इस चीज का? इस पर गुफ्तगू मौजूद है, वो ले लीजिए। मुझे दोबारा बताने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन होता ही है कि मैंने शुरू में कोशिश की कि एक ही सवाल के कई बार उनका जवाब मैं दे देता था, लेकिन लोग एहतजाज करते हैं इस बात पर कि हमारा वक्त ज़ाया होता है, तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नाकिस अकल के मुताबिक रिज़्क हलाल भी इस्लाम बल्कि ईमान का एक बुनियादी रुकन है और कलमा के बाद उसका दर्जा आता है। आजकल पंजाब हुकूमत की तरफ से इस पर काफी सख्ती की जा रही है। अल्लाह की तरफ से हलाल और हराम रिज़्क के लिए हमारी भलाई के कौन से अनासर हैं? क्योंकि इबादत की कबूलियत के लिए हमारी ग़िज़ा का हलाल होना शर्त है। अब ये रिज़्क हलाल जिन मायनों में समझा जाता है, वो जो खाने पीने की चीजों में हलाल मकरूह और हराम है, उस सेंस में ये नहीं है। ये है कि हम अपने रिज़्क जिंदा रहने का सामान हम जायज तरीके से अगर कमाएं, जिसमें झूठ धोखा फरेब ना हो, वो रिज़्क हलाल है। ये रिज़्क हलाल से मुराद वो है। तो आपकी इस इत्तला पर मैं खुश हुआ था कि आजकल पंजाब हुकूमत की तरफ से इस पर सख्ती की जा रही है, तो मुझे खुशी हुई कि चलिए बिलाखिर हुकूमत ने لوگوں کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ وہ صرف رزق حلال ہی کمائیں, رشوت سے دور رہیں. لیکن وہ آپ تو کسی اور سینس میں کہہ رہے ہیں. تو رزق حلال اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ اتوار آپ سے بات کرتا ہوں, کیونکہ اب تو وقت پورا ہو گیا. نیکسٹ سنڈے بشرطِ زندگی, سوری نیکسٹ سنڈے نہیں ہوں گا میں پاکستان میں, اس سے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.